हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य ने गहरी सांस ली और शांत लेकिन तंज भरे लहजे में बोला, मुझे नहीं पता दादाजी गलती किसकी थी और किसकी नहीं, और मुझे भी उतना ही बुरा लग रहा है जितना आपको। लेकिन आपने दोनों की शक्ल देखी है, एक लड़की से मार खाकर बैठे हैं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान फिर आ गई। तभी कबीर बोलने की कोशिश करने लगा था और अपनी दर्द भरी आवाज में हथलाते हुए बोला था। उसका एक एक पंच ऐसा लग रहा था मानो कोई पहलवान मार रहा हो। पता नहीं उस दुबली पतली सी लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। जैसे ही कबीर ने ये कहा, ना चाहते हुए भी एक बार फिर आदित्य को हंसी आ गई थी और वहीं दादाजी गुस्सा होकर लगातार उसे शांत होने के लिए कहने लगे थे। वहीं दूसरी ओर झलक सीधा अपने मेंशन में आ गई थी। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। अब सभी लोग पीछे पीछे आ गए थे और झलक को समझाना संभालना चाहते थे, क्योंकि उसका गुस्सा देख चुके थे जो इस वक्त आदित्य और कबीर पर उतर चुका था। उन्हें लग रहा था कि न जाने गुस्से में वो क्या कदम उठा लेगी। सभी लोग लगातार उसका दरवाज़ा खटखटाने लगे थे। स्नेहा जी तो पूरी तरह से रोने ही लगी थीं कि न जाने उनकी बेटी को अब क्या हो गया है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, करीब 8 से 10 मिनट बाद झलक ने बेहद सख्त चेहरे के साथ दरवाज़ा खोला था। उसका चेहरा देखकर सब कन्फ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगे। सबसे पहले सौरभ जी तुरंत झलक के पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले थे, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? कोई परेशानी है? और उस लड़के ने ऐसा क्या कहा कि तुम इतनी गुस्से में आ गई? तभी झलक ने बेहद शांत लेकिन सख्त चेहरे के साथ कहा था, उन दोनों लड़कों ने मुझे गलत बोला था, इसीलिए मैंने उनकी जमकर पिटाई कर दी। और कौन मेरे बारे में क्या राय रखता है और क्या सोचता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झलक ने साफ जवाब दिया और कहा था, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं रोने धोने या अपनी जान देने वालों में से नहीं हूँ कि किसी के एक कमेंट से बैठ जाऊँ। वो बेवकूफ़ी मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं करूँगी। आप लोग परेशान मत होइए और जाकर आराम कीजिए। झलक ने बेहद सादगी से सभी लोगों से कहा और सबको आराम करने के लिए भेज दिया। उन सब के जाने के बाद झलक सीधा अपने कमरे में गई। सिद्धार्थ खुराना की वो बातें जो वो उसके सामने बकवास कर रहा था, सब उसे याद आने लगी। वो याद करते ही उसका खून खौलने लगा। वो सोचने लगी, मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, मुझे लगा था कामयाबी से तुम्हें जलील करूंगी, लेकिन शायद तुम मानने वालों में से नहीं हो। तुमने यहाँ आकर मेरे बारे में घटिया बातें करके मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाऊं। ये सोचते हुए झलक पूरी तरह से आत्मविश्वासी नजर आ रही थी। फिलहाल आदित्य अपने कमरे में मौजूद था। आज जो कुछ भी हुआ, झलक ने जिस तरह से उन दोनों की पिटाई की, उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। वो सोच रहा था कि किसी ने भी झलक के केस में उसकी सफाई में एक भी शब्द नहीं कहा। इतना ही नहीं, दादाजी भी वहां आए थे, अनामिका भी वहां थी, लेकिन किसी ने भी एक बार ये नहीं कहा कि उस पर लगे इल्ज़ाम गलत हैं। उल्टा जो इल्ज़ाम लगे थे, उन्हें भी किसी ने साफ तौर पर नकारा नहीं। ऊपर से झलक फ़ोन लेकर चली गई। आखिर चल क्या रहा है इस लड़की के दिमाग में? मुझे लगता है कि मुझे जाकर उससे कल ही मिलना होगा और सारी बातें क्लियर करनी होंगी, वरना उसके बारे में जितना मैं सोचूंगा उतना ही पागल हो जाऊंगा। ये सोचते हुए आदित्य सोने की कोशिश करने लगा। वहीं कबीर और अभय के शरीर में बेतहाशा दर्द था। पूरी रात दोनों दर्द के मारे कराहते रहे थे और ना जाने दवाइयों के नशे में कितनी देर बाद जाकर सोए थे। फिलहाल बालवीर इस वक्त अकेले कमरे में मौजूद थे और सोच रहे थे, देखो दिग्विजय यहाँ आया भी और उसने एक बार भी अपनी सफाई में कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा, और जब मैं उसकी पोती को गलत कह रहा था तो उसकी आंखों में एक बार भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि उसे बुरा लग रहा हो। आखिर मामला क्या है? उन्होंने तय कर लिया था कि अगली सुबह जाते ही सबसे पहले वो अपने दोस्त से मिलेंगे, सारी बातें क्लियर करेंगे और अपने जवाब भी मांगेंगे। वहीं दूसरी ओर झलक बेहद शांति से गहरी नींद में सोई हुई थी। लोगों की बातों की परवाह करना उसने छोड़ दिया था। गहरी नींद सोने के बाद उसकी आंखें अगली सुबह ही खुली। अगली सुबह वो उठी, फ्रेश हुई और सीधे डाइनिंग टेबल पर आकर स्नेहा जी को देखते हुए बोली, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप एक काम कीजिए, आज मेरे लिए एग पराठा बना दीजिए प्लीज। जैसे ही इतने दिनों बाद झलक ने फरमाइश की, स्नेहा जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वहीं अनामिका, सौरभ और दादाजी, जो झलक के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे थे, उसकी फरमाइश सुनकर उनके भी कान खड़े हो गए। अनामिका मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और बोले, तुम एग परांठा खाने वाली हो इतने दिनों के बाद? सच में बहुत अच्छा लगा सुनकर। कभी कभी डाइट से अलग भी खाना चाहिए, तुम तो जानती हो मैं कितना फूडी हूँ। अपनी आधी जिंदगी तो मैंने यही कैलोरी, डाइट और रूल रेगुलेशन फॉलो करने में ही गुजार दी, लेकिन अब तो रूल तोड़ने में बड़ा ही मजा आता है। उसने शरारती नजरों से दादाजी को देखते हुए कहा। दादाजी ने गहरी नजरों से अनामिका को देखा और फिर बोले, बेटा कभी कभार बाहर का खाने की इजाजत है, लेकिन रोज रोज नहीं। अब बड़ी हो गई हो तो हाँ, आपको कुछ नहीं कहेंगे, पर आपके दांतों का पूरा अधिकार हमारे पास है। दादाजी ने जैसे ही ये कहा, अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी परांठा आ गया था और झलक ने बड़े चाव से उसे खाना शुरू कर दिया था। आज उसके चेहरे का दुख दर्द ऐसा लग रहा था मानो काफी हद तक कम हो गया हो। एक अजीब सा सुकून उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। अब अनामिका जल्दी से दादाजी के कानों में सरगोशी करते हुए बोली थी, दादाजी अगर पता होता कि अभय और कबीर को पीटने के बाद झलक इतनी ज्यादा शांत हो जाएगी और उसके चेहरे पर ऐसा सुकून आ जाएगा तो मैं उसे कब का उनकी पिटाई करवा चुकी होती। ये सुनकर दादाजी ने तुरंत ही कहा, चुप चुप रहो, अगर झलक ने सुन लिया तो कहीं तुम्हारी पिटाई ना शुरू कर दे। दोनों अनामिका को जल्दी से देखने लगे थे। वहीं सौरभ जी चुपचाप आंखों से झलक को देख रहे थे और आज उसे मन भर कर खाते हुए देखकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। वो जल्दी से उठ खड़े हुए और उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। कहीं ना कहीं सौरभ जी काफी ज्यादा इमोशनल थे, क्योंकि एक तो अपनी बेटी का बचपन वो ठीक तरीके से देख नहीं पाए थे, ऊपर से जब से उन्होंने झलक को देखा था वो एकदम टूटी बिखरी स्थिति में थी। फिर धीरे धीरे वो मजबूत भी हुई पर पत्थर दिल बन गई थी। ज्यादातर सौरभ जी अपना समय स्नेहा जी के साथ बैठकर झलक के बचपन के किस्से सुनते रहते थे कि वो कब क्या करती थी, कैसे किसी को भी पीट देती थी, कैसे किसी से भी उलझ जाया करती थी, किस तरह से अपने पिता के साथ चोरी छिपे बेयर पार्टी किया करती थी। ये सारी बातें वो उनसे सुनते रहते थे और अपने दिल को सुकून पहुंचाते रहते थे कि उनकी बेटी कभी कितनी जिंदा दिल हुआ करती थी। और आज झलक को ऐसे हंसते खाते देखकर उन्हें सच में सुकून मिल रहा था। वहीं झलक ने जल्दी से अनामिका को देखकर कहा, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आज शाम को हम लोग क्लब चलेंगे, ठीक है? अगर तुम्हें चलना है तो तुम तैयार हो जाना, मैं ठीक 9 बजे निकल जाऊंगी। जैसे ही झलक ने ये कहा, अनामिका आंखें फाड़कर उसकी ओर देखने लगी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर झलक का ये कौन सा रूप है जो इस कदर बदल गया है। झलक हल्की मुस्कुराहट के साथ उठ खड़ी हुई और वहां से सीधे ऑफिस के लिए निकल गई। उसकी मुस्कुराहट देखकर अनामिका ने खोए हुए अंदाज में कहा, दादाजी एक बार मुझे पिंच कर दीजिए प्लीज, ऐसा क्यों लग रहा है मानो एक बार फिर से झलक अपने पुराने रूप में लौट आई है।
दादाजी ने भी मुस्कुराते हुए अनामिका के हाथ पर हल्का सा पिंच कर दिया। अनामिका जोर से चीख पड़ी, दादाजी ये क्या, आपने तो सच में जोर से काट लिया। दादाजी हंस पड़े, अरे तुमने ही तो कहा था। फिर थोड़े गंभीर होकर बोले, वैसे बेटा हुआ क्या है, रातों रात क्या बदल गया? क्या उन दोनों को पीटने के बाद झलक खुद को ज्यादा हल्का फुल्का महसूस कर रही है? मैं सोच रहा हूँ उन दोनों का शुक्रिया अदा करने चला जाऊँ, आखिर उन्हीं की वजह से मेरी झलक के चेहरे की मुस्कान लौट कर आई है। दादाजी ने ये बात बेख्याली में कह दी। अनामिका भी हंसते हुए बोली, दादाजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक काम करते हैं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, रास्ते में कबीर के लिए कुछ फल वगैरह ले लेते हैं, और हाँ एक बार फिर उनसे कह दीजिएगा कि अगली बार भी पिटने के लिए तैयार रहें। अनामिका की बात सुनकर दादाजी मुस्कुरा दिए। फिलहाल दादाजी और अनामिका दोनों राणा मेंशन से निकल चुके थे, इस बात से बेखबर कि बालवीर खुद उनसे मिलने की सोच रहे थे। वहीं झलक सीधे अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी और उसने फटाफट अपने सारे काम निपटाने शुरू कर दिए थे। शालिनी छुट्टी पर जा चुकी थी तो उसकी जगह झलक ने अपने लिए नई असिस्टेंट हायर की थी। वो लड़की बेहद साधारण और गरीब परिवार से थी और झलक ने उसे सड़क से उठाकर अपनी असिस्टेंट बनाया था। वो लड़की बेहद खुश थी, झलक न केवल उसकी मदद कर रही थी बल्कि उसकी काबिलियत को भी पहचान रही थी। फिलहाल झलक तेजी से सारा काम निपटा रही थी क्योंकि उसे एक बार फिर साइट पर भी जाना था आदित्य के साथ। आदित्य चाहता था कि काम उसकी आंखों के सामने हो और वो बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता था। आखिरकार ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे पूरा करने के बाद ही झलक अपनी असली चाल चलने वाली थी। वहीं दूसरी ओर आदित्य झलक से सीधे बात करने के लिए उसके ऑफिस निकलने ही वाला था कि तभी उसके दरवाजे की डोरबेल बज उठी।